नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्येशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सुत उवाच महीपतिस्तत्कर्म गर्ह्या विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मनः। अहो मया नीच मनार्जवत्कृतम् निरागसे ब्रह्मणि गूढतेजसे। सुत उवाच सुत गोस्वामी ने कहा महीपति है पृथ्वीपति महाराज परीक्षित तो इसके बाद अथ अब तत्कर्म अपने कर्म के विषय में गर्ह्याम एक बार इस श्लोक का अर्थ हिंदी में बोले पीछे से सुत गोस्वामी ने कहा बोलिए आप। महाराज परीक्षित समित मुनि के गले में मृत सर्प डाले थे। अपने इस कर्म को याद करके उन्हें बड़ा पश्चाताप होने लगा। उन्होंने कहा अहो मैंने नीच व्यक्ति की तरह उस ब्राह्मण के गले में सर्प डाला। वे ब्राह्मण अपने तेज को छिपाए हुए थे और मेरे प्रति उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी मैंने ऐसा नीच कर्म किया। एक बार महाराज परीक्षित वन में गए थे तो अकस्मात उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी और भूख भी लगी। वे पानी की खोज करने लगे। पानी खोजते खोजते वे एक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। प्यास के कारण उनका गला सूख रहा था, तालू सूख रहा था, बोला नहीं जा रहा था। उन्होंने बहुत जोर लगाकर कहा, जलम देही, बहुत जोर लगाकर। लेकिन समीप मुनि जिनका वो आश्रम था, वे भगवान के ध्यान में थे, समाधि लग गई थी, अतः वे राजा परीक्षित के आवाज को सुन नहीं पाए। वे यदि जाने होते कि महाराज परीक्षित उनके यहां आए हैं, पानी मांग रहे हैं, तो वो तो उठकर स्वागत किए होते, परंतु भगवान के ध्यान में डूबे होने के कारण समीक मुनि को महाराज परीक्षित के आगमन का कुछ भी पता नहीं चला। महाराज परीक्षित की ऐसी दशा हो रही थी, लगता था कि अब प्राण निकल जाएगा, प्राण निकल जाएगा। एक तो ईश्वर की इच्छा से ये प्यास लगी थी उनको, और भूख भी लगी थी, और भी मन में दुर्भावना हुई, इसलिए जानबूझ करके आंखें बंद किया है, मेरा तिरस्कार कर रहा है। वास्तविकता ये नहीं थी, वास्तविक बात यह थी कि समीक मुनि भगवान के ध्यान में लीन थे। तो राजा परीक्षित ने यह सोचा कि जब ये ब्राह्मण मेरा स्वागत नहीं कर रहा है, मुझे पानी नहीं दे रहा है, तो मैं भी इसका ऐसे ही तिरस्कार करूंगा। तो वे कुटिया से बाहर निकल रहे थे तो एक मरा हुआ सांप पड़ा था। उस मृत सर्प को धनुष के नोक से उठा करके और माला की तरह लपेट दिए उस ऋषि के गले में। यह कर्म महाराज परीक्षित के योग्य नहीं था, लेकिन ऐसी दुर्भावना आ गई। उसके बाद ये चले आए। समीक मुनि का एक पुत्र था बहुत तेजस्वी, जिसका नाम था श्रृंगी, श्रृंगी ऋषि। तो नदी में स्नान कर रहा था, उसी समय एक बच्चे ने जाकर कहा कि तुम्हारे पिताजी को सांप डस दिया। वो बच्चा समझा नहीं कि मरा हुआ सांप। उसने देखा समीक मुनि के गले में सर्प था, तो उसने आकर के श्रृंगी से कहा कि तुम्हारे पिताजी तो मर गए, उनके गले में सांप। तो वह अभी मूर्ख बच्चा आकर के देखा नहीं, वहीं से कौशिकी नदी के जल को लेकर के हाथ में और सांप दे दिया महाराज परीक्षित को कि जिस व्यक्ति ने हमारे पिता के गले में सर्प डाला और हमारे पिताजी मर गए, तो उस राजा की, उस व्यक्ति की सातवें दिन मृत्यु हो जाएगी। और उसने यही ये जाना कि परीक्षित ऐसा किए हैं, तो उसने कहा कि भगवान कृष्ण जब चले गए अपने धाम तो ये राजा लोग उदंड हो गए, तो मैं कृष्ण का प्रतिनिधि हूं, मैं ऐसे राजा को दंड दूंगा। सातवें दिन तक्षक नाग डसेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। यह कहा, उसने साप दे दिया। इसके बाद अपने पिता के पास आया, सचमुच देखा कि गले में सांप है, तो वो जोर जोर से रोने लगा। हाय पिताजी, आप परलोक चले गए, मेरा कौन होगा, ये होगा वो होगा। तो समीक मुनि का ध्यान टूटा बच्चे के रोदन के शब्द को सुनकर। तो वे जब ध्यान से उठे तो सांप को निकाल कर फेंक दिए और बच्चे को गोद में ले लिए। क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो बच्चा कहने लगा कि मैं तो समझा कि आप तो मर गए, आपको सांप डस दिया, और इसलिए मैंने राजा परीक्षित को साप भी दिया। इतना सुनते ही समीक मुनि बहुत दुखित हो गए, बहुत दुखित हो गए। वे लगे कहने कि अरे कच्ची बुद्धि के, तुमने ऐसे महान राजा को दंड दिया, ठीक नहीं। राजा परीक्षित के कारण धर्म है इस जगत में, वे भगवान के परम भक्त हैं। हमारे आश्रम में भूखे प्यासे आए थे, हमारा ध्यान नहीं गया, उन्होंने मृत सर्प लपेट दिया, इसमें कोई बहुत अपराध नहीं किया, तुमने उनको मरने का श्राप दे दिया, हाय हाय, तो बहुत गलती किया। इसके बाद श्रमिक मुनि महाराज परीक्षित के पास एक पत्र भेजे, खबर भेजे और कहे कि महाराज आपको केवल 7 दिन जीना है, इस 7 दिन के भीतर अपने जीवन की परम सिद्धि के लिए अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको जो कुछ भी करना है कर लीजिए। कि मनुष्य जीवन के केवल 7 दिन रह गए, तो इसमें जो भी आपको करना है परलोक के लिए, मुक्ति के लिए, संसार बंधन से मुक्त होने के लिए, आप कर लीजिए। समीक मुनि ने सोचा कहीं राजा असावधान अवस्था में ही ना मर जाए, उनको खबर दे देना चाहिए। तो महाराज परीक्षित को अभी संवाद मिला नहीं था, जब वे घर पहुंचे तो संवाद मिलने के पहले ही वे अपने मन में सोचने लगे, पश्चाताप करने लगे। कोई बड़ा व्यक्ति कुछ गलती कर बैठता है तो उसे बाद में अनुताप होता है, पश्चाताप होता है, ये अभी एक बड़प्पन है। और छोटे लोग कोई भी अपराध कर लेते हैं तो फिर वो मानते भी नहीं है कि हमने गलती किया। अगर कोई उनको कहे भी कि तुमने गलती किया तो उसका औचित्य वे ठहराते, क्या गलती किया, मैं ठीक किया। लेकिन महाराज परीक्षित तो अपने आप अफसोस करने लगे। तत्कर्म अर्थात अपने कर्म के विषय में वे सोचने लगे, अहो मया नीचम अनार्जवत कृतम निरागसी ब्रह्मणी गुढ़ तेजसी, हाय हाय, मैंने बहुत बुरा कर्म किया, उस ब्राह्मण के गले में मैंने सांप डाला। एक तो वे निरपराध थे, हमारा कोई अपराध नहीं किए थे। कोई व्यक्ति यदि किसी का अपराध करे तो उसको कुछ दंड दिया जा सकता है, लेकिन ब्राह्मण देवता मेरा कुछ अपमान नहीं किए थे, मेरा अपराध नहीं किया, और मैं उनको पहचाना नहीं, उनका प्रबल ब्रह्म तेज छिपा हुआ था, मैं भगवान के ध्यान में थे, मैं तो ऐसा कर्म किया हूं जैसे कोई नीच व्यक्ति करता है। यह नीचे का अर्थ है अनार्ज, जो आर्ज नहीं है उसको नीच कहा गया। किसी पर थूक देना या मृत सर्प डालना, कुछ भी अपमान पर वचन बोल देना, यह नीच का कार्य है। हमने पढ़ा है महाराष्ट्र में एक भक्त हो गए हैं बहुत पहले, नामदेव जी, तो एक बार ये जा रहे थे स्नान करने के लिए, मुझे याद नहीं गोदावरी में या चंद्रभागा में, गोदावरी में स्नान करने जा रहे थे, तो रास्ते में एक यवन की हवेली थी, हवेली समझते ना बड़ा घर, यवन मतलब मुसलमान, तो उधर से जब स्नान करके आ रहे थे नामदेव जी, तो उसने थूक दिया उनके ऊपर, ऊपर से तो थूका, तो वे गए फिर से स्नान करके आ गए, फिर से स्नान करके, जब स्नान करके आते थे तब वो थूक देता था। तो इस तरह से 14 बार उन पर थूका, 14वीं बार जब स्नान करके आए तो उसका मन बदल गया, देखा कि वो कितने बड़े साधु हैं, मैं कितना नीच कर्म किया, तो आकर के चरण में गिरा। बाद में वो थक गया थुकते थुकते और 14-12 स्नान, इसको कहते हैं नीच, नीच अनार्च। ये साधु पर थुक देना, दुर्वचन बोलना। एक महाराज परीक्षित सोच रहे हैं, अहो मया नीचम अनार्जवत कृतम, मैं अनार्ज की तरह कार्य किया। हिंदू को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। यहाँ अनार्ज शब्द से ये तात्पर्य, और दूसरे लोग नीच कर्म करते हैं, गोमान शादी खाते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, उनके लिए जो कुछ भी हो, लेकिन आर्जों को ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित सोच रहे हैं, मैंने क्या किया, एक ब्राह्मण के गले में मृत सर्प डाल दिया। तब अब सोच रहे हैं, निश्चित इस दुष्कर्म के कारण मेरे जीवन में बहुत भयंकर विपत्ति आएगी, निश्चित ऐसा सोच रहे हैं। ध्रुवम ततो में कृतदेव हेलना दुरत्यम व्यसनम नात दीर्घ तदस्तु कामम यज्ञनिष्कृताय में जथा न कुर्जाम पुनरेव मध्या। ध्रुवम, निश्चित इस कर्म के कारण मेरे जीवन में भयंकर विपत्ति आएगी, क्योंकि मैंने वास्तव में भगवान का अपमान किया है, भगवान के भक्त का अपमान किया है, ब्राह्मण का अपमान किया है, तो यह भगवान का अपमान हुआ है। तो मेरे जीवन में ऐसी विपत्ति आएगी, ऐसा दुष्ट व्यसन आएगा जिसको मैं पार नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसी शंका करते ही फिर कहते हैं, तदस्तु कामम त्वघनिष्कृताय में, हमारे जीवन में संकट आवे, मैं चाहता हूं जिससे मेरा अघ निष्कृत होगा, मेरे पाप की शुद्धि होगी, मेरा पाप नष्ट होगा। महाराज परीक्षित कह रहे हैं, मैं चाहता हूं, और कामम, कामों का अर्थ जथेष्टम, जैसी भी विपत्ति आवे, जितना भयंकर आपत्ति आवे, मैं चाहता हूं जिससे कि मेरा पाप नष्ट हो और फिर से मैं ऐसा काम ना कर पाऊं। इस प्रकार एक ब्राह्मण के प्रति, एक भक्त के प्रति मैंने जो किया, ऐसा कार्य में फिर न कर पाऊं, भगवान मुझे दंड देता, बहुत अच्छा होता। यहां तक मना रहे, अद्यैव राज्यम बलमृद्ध कोशम ब्रह्मा प्रकोपित ब्रह्म कुला नलो में दहत भद्य से पुनर्नमे भूत पापी यसे धीर द्विजदेव गोभ्य। आज ही मेरा घर, राज्य, सेना, कोष सब जल जाए। ब्राह्मण के कुपित, ब्राह्मण के क्रोधानल में मेरा सब कुछ नष्ट हो जाता, अच्छा होता मेरा राज्य। यहाँ राज नष्ट होने का मतलब मैं राजा ना रह पाऊं, सेना मेरे कमांड में ना रहे, मेरा कोष नष्ट हो जाए, धन सब कुछ नष्ट हो जाए, ब्राह्मण के क्रोधानल में मेरा सब भस्म हो जाए, दहतु नष्ट हो जाए, जिससे कि मुझ अभद्र के जीवन में ब्राह्मण के प्रति, गौओं के प्रति और देवताओं के प्रति कभी भी इस प्रकार की बुद्धि न होने पावे जैसा मैंने किया। इस संसार में यदि कदाचित किसी के प्रति द्रोह हो भी जाए, लेकिन इन तीन के प्रति कभी नहीं होना चाहिए, द्विज, देव और गोभ्य। ब्राह्मणों के प्रति, गौओं के प्रति और देवताओं के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, उन्हें कभी दुख नहीं देना चाहिए। वास्तव में ब्राह्मण जो वेद शास्त्र पढ़ते हैं और समाज को ज्ञान देते हैं, धर्म कर्म का उपदेश करते हैं, उन्हें संकट में नहीं डालना चाहिए, उनकी जीविका का हनन नहीं होना चाहिए। और गौएं जो दूध देती हैं, समाज के लिए सबसे सुंदर पथ्य उपस्थित करती है। मनुष्य समाज के लिए गोदुग्ध बहुत आवश्यक। देवता भी गाय के घी से ही भोजन करते हैं। गाय का बहुत बड़ा महत्व है, तो किसी भी तरह से गाय को दुख में नहीं डालना चाहिए, बल्कि गौओं की सेवा करनी चाहिए। हमारे भारतवर्ष में ये बहुत परंपरा है, गो सेवा की करते रहते हैं। ये बाद में भारत में ये जो मुसलमान और क्रिश्चियन चले गए, ये लोग जा जा करके वहां गाय काटना चालू किए। नहीं तो पहले वहां गोबर बिल्कुल नहीं होता था, ये म्लेच्छ और यौनों के कारण वहां गोबर होने लगा। अब धीरे धीरे सेकुलर स्टेट बना करके अब सारा नियम लगा रहे हैं, गोबध कर रहे हैं। परंतु वास्तव में ये महान व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसके कारण गौओं को सुख मिलना चाहिए, दुख नहीं। और देवता इस विश्व की व्यवस्था करते हैं, पानी बरसाते हैं, प्रकाश देते हैं, हवा आदि की व्यवस्था करते हैं। ये विश्व के बड़े बड़े मैनेजर हैं जो भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए। देवताओं की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। महाराज परीक्षित कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा संकट आवे जिससे कि ब्राह्मणों के प्रति, गौओं के प्रति और देवताओं के प्रति मेरी ऐसी बुद्धि न होने पावे जैसी अभी हुई थी। इस प्रकार से वे सोच ही रहे थे। सचिंतयन मिथमथ श्रृणोजथा मुने सुतोक्त निवृत्ति पक्ष काख्य साधु मेने न चिरेण तक्ष का नलम प्रसक्त विरक्ति कारणम। इस प्रकार वे सोच रहे थे कि हमारे जीवन में कोई संकट आवे, कुछ हो, तब तक उन्होंने सुना। स इथम चिंतयन अथ अश्रोत, उन्होंने सुना। क्या सुना? मुने सुतोक्त, मुनि के पुत्र द्वारा कहा हुआ निर्वृत्ति मृत्यु। कैसी मृत्यु? तक्षकाख्य, तक्षक नाग के रूप में मृत्यु, उन्होंने सुना। तक्षक एक सर्प है जो पाताल लोक में रहता है। जितने भी भयानक सर्प हैं उनमें से तक्षक भी एक मुख्य है। श्रीमद् भागवत में इनके नाम दिए गए हैं कुछ सर्पों के जो पाताल लोक में रहते हैं। भगवान ने सबकी व्यवस्था की है, कौन कहाँ रहेगा, कैसे कैसे, विशाल सृष्टि। तो तक्षक ब्राह्मण के श्राप से प्रेरित होगा और वो आकर के सातवें दिन डसेगा। महाराज परीक्षित ने ये सुना तो ससाधु मैंने, महाराज परीक्षित बहुत प्रसन्न हो गए ये सुन करके। जब उन्होंने सुना कि समित मुनि के पुत्र ने हमें साप दिया है, सातवें दिन तक्षक हमें डसेगा, तो ससाधु मैंने, साधु का अर्थ बहुत अच्छा, मैंने का अर्थ माने, बहुत अच्छा माने, अपना सौभाग्य माने, क्योंकि न चिरेण तक्ष का नलम प्रसक्त विरक्ति कारणम। महाराज ने सोचा कि मैं राज्य में आसक्त हूं, भोगों में आसक्त हूं, देह में आसक्त हूं, तो तक्षक का विषानल, तक्षक के विष की अग्नि मेरे विरक्ति का कारण होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं इस तरह से राज्य में आसक्त था। महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण के लोक में जाना चाहते थे, इस पृथ्वी पर रहना नहीं चाहते थे। वास्तव में जो जीव भगवान के भक्त नहीं है, माया बंधन में है, वो तो यही रहना चाहते हैं, चाहे दुख हो, कुछ भी हो, भगवान के धाम में जाना चाहते ही नहीं। ईसाई का कहते हैं, अगर आज ही भगवान के पार्षद आवे और यहाँ शिकागो में कुछ लोगों को कहें कि चलिए भगवान बुलाए हैं आपको, तो आदमी कहेगा अभी नहीं, हमको थोड़ा घर का एडजस्टमेंट करने दो, कुछ दिन के बाद चलेंगे, लेकिन आप ही मत ले जाओ। और तो युवक की बात छोड़ दीजिए, बूढ़े बूढ़े लोगों को भी अगर भगवान के पार्षद कहेंगे चलो तो नहीं जाएंगे, तो अब क्या व्यवस्था बाकी, इतनी आसक्ति है। पर महाराज परीक्षित तो बिल्कुल युवक थे और वे चाहते थे भगवान के धाम में जाना, इस संसार में जीना, भोग भोगना, स्वर्ग का चाहे पृथ्वी का, उनको सब कुछ असार लगता था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। और ऐसी दशा में वे सुने कि तक्षक डसेगा, तो उन्हें बहुत खुशी हुई, अपार प्रसन्नता हुई। सूत जी कहते हैं कि अथो विहाय ममुम च लोकम विमर्शितौ हेतया पुरस्तात् कृष्णांग्रि सेवाम अधिमन्यमानो उपाविशत प्राय ममर्त नद्याम। इस लोक के भोग को छोड़ करके, अर्थात भोगने की इच्छा छोड़ करके और परलोक स्वर्ग के भोग आदि को छोड़ने की इच्छा को छोड़ दिए, भोगों की इच्छा को छोड़ दिए, पहले से ही छोड़े थे। विमर्शित हे तया पुरस्तात, पुरस्तात का अर्थ पहले से ही, पहले से ही इस लोक के भोग और परलोक के भेद भोग को हे तया विमर्शित, बहुत विचार किए थे महाराज परीक्षित, बहुत सोचे थे कि इस लोक के या परलोक के स्वर्ग आदि के जो भोग हैं सब हे, हा का अर्थ होता है त्यागना और हे का अर्थ त्यागने योग्य है, दो शब्द है संस्कृत के जो परस्पर विरुद्ध है, एक उपाध्याय और हे का अर्थ होता है त्यागने लायक तुच्छ, और उपाध्याय का अर्थ होता है ग्रहण करने लायक बहुत उपयोगी वस्तु। तो महाराज परीक्षित इस पृथ्वी के भोग जैसे खाने के, देखने के, सूंघने के, स्पर्श करने के, तो बिल्कुल है समझते थे और स्वर्ग को भी है समझते थे पहले से। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का साप सुनने के बाद वे तुच्छ समझो, पहले से ही वो सोचते थे कुछ नहीं संसार में, इस दुनिया में कुछ नहीं है। कृष्णांग्र सेवम अभिमन्यमान, तो कृष्ण के चरण कमल की सेवा को ही सबसे अधिक मानते थे, अभिमन्यमान अधिकम मन्यमान। महाराज परीक्षित जन्म से ही भगवान के भक्त थे, गर्भ में भगवान ने इनकी रक्षा किया था, तो कभी जीवन में भोगों के प्रति इनकी लालसा नहीं हुई, भगवान की भक्ति करने की, भगवान की सेवा करने की लालसा रही हमेशा। तो ब्राह्मण का साप सुनने के बाद तो और इनकी चित्तवृत्ति भगवान के चरण कमल में लग गई, कृष्णांग सेवाम अधिमन्यमान। मनुष्य जीवित रहता है तो कुछ न कुछ अपने मन में सोचता है कि हमको ये चाहिए, हमको यह चाहिए, हमारे जीवन में इसका महत्व तो है, इसका महत्व तो है। महाराज परीक्षित को कुछ भी दुर्लभ नहीं था, वे इस विश्व के सम्राट थे, उनके लिए किसी प्रकार की सवारी या भोजन उत्कृष्ट से उत्कृष्ट या स्त्रियां कुछ भी दुर्लभ नहीं, लेकिन कभी भी उन्हें अच्छा नहीं लगा संसार का भोग। तो मुख्य बात यही है कि मनुष्य अपने जीवन में किसको महत्व देता है, किसको अच्छा समझता है, तो यही सबसे बड़प्पन है, सबसे बड़ा लक्ष्य है। कृष्णांग सेवाम अधिमन्यमान, कृष्ण के चरण कमल की सेवा को ही अपने जीवन का परम पुरुषार्थ मानना। महाराज परीक्षित ऐसे परिवार में जन्म लिए थे कि शुरू से ही इनको एक ट्रेनिंग थी, शुरू से ही भगवान को ही महत्व देना, इनके पूर्वजों ने युधिष्ठिर आदि ने भगवान को ही महत्व दिया है, कुछ भी संकट में पड़े, विपत्ति में, वनवास में, कहीं भी, पर कृष्ण को उन्होंने नहीं छोड़ा। कृष्ण को सर्वोपरि महत्व दिया। एक बार की घटना है, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होना निश्चित हो गया, तब कृष्ण से युद्ध में सहायता के लिए अर्जुन गए और दुर्योधन भी गए द्वारका। पहले के क्षत्रिय लड़ने के लिए तैयार रहते थे, युद्ध के लिए कोई निमंत्रण देता था उनको तो उनको खुशी होती थी कि हमको निमंत्रण मिला है इस पक्ष से युद्ध करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण भी एक विश्व प्रसिद्ध योद्धा थे, क्षत्रिय थे, तो इनके पास भी निमंत्रण लेकर गए। युधिष्ठिर महाराज का निमंत्रण लेकर अर्जुन गए और दुर्योधन तो स्वयं गया। लौकिक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के संबंधी भी लगते थे। दुर्योधन की पुत्री का विवाह भगवान के पुत्र से हुआ था, बहुत निकट का संबंध। और अर्जुन भगवान के फुफेरे भाई थे और भगवान कृष्ण उनके ममेरे भाई थे, मामा वसुदेव के पुत्र थे। तो इस तरह से बहुत घनिष्ठ संबंध था। और अर्जुन का विवाह भी भगवान कृष्ण की बहन से हुआ था, सुभद्रा से। तो गए सहायता के लिए। तो सबसे पहले दुर्योधन पहुंचा था, दुर्योधन को कोई रोका नहीं क्योंकि पहले से ही आना जाना रहता था द्वारका में। वो गया, भगवान श्री कृष्ण अभी पलंग पर सोए हुए थे। वो जा करके एक कुर्सी रखी हुई थी भगवान के सिर के पास, सिरहाने बैठ गया। वो सोचा कि मैं समधि हूं, बराबर हूं इनके। तो बैठना तो चाहिए था चरण में, लेकिन वो जाकर के उधर बैठ गया। अर्जुन बाद में पहुंचे। अर्जुन गए तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सोए हुए हैं। तो कुछ देर तक तो सोई हुई छवि को देखने लगे, इसके बाद भगवान के चरणों के पास बैठ गए अर्जुन। और बैठ करके धीरे धीरे अपने हस्त कमल से भगवान के चरण को दबाने लगे। ऐसे तो सर्वज्ञ भगवान पहले ही जगे थे, लेकिन जानबूझकर आंखें नहीं खोले थे, दुर्योधन को देखे नहीं। अर्जुन को देखे चरण दबाते हुए तुरंत उठे, उठ करके अर्जुन से मिलने लगे, समाचार पूछने लगे, कब आए, कैसे आए। तब तक दुर्योधन पीछे से कहा, द्वारकाधीश मैं भी आया। अच्छा अच्छा अच्छा, आप भी आए हैं। तो भगवान ने बाएं दृष्टि से देखा, दाहिनी दृष्टि से नहीं देखा। अच्छा आप आए, तो भगवान मिलने लगे। भगवान तो सबके लिए सम है, तो कैसे आए कैसे आए। तो दुर्योधन ने बताया कि हम युद्ध में सहायता के लिए आए आपके पास। अर्जुन ने भी कहा कि हम भी युद्ध में सहायता के लिए आए। भगवान ने कहा कि देखिए, ये युद्ध हमारे संबंधियों के बीच हो रहा है, तो मैं तो इसमें अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं किसी का वध नहीं करूंगा, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, लूंगा पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन आप सहायता के लिए आए हैं तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरी एक सेना है, नारायणी सेना, एक औक्षहणी सेना, जादुओं की सेना है, एक पक्ष में वे रहेंगे और एक पक्ष में मैं रहूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और इसमें से दोनों में से एक को चुनने के लिए मैं पहले अर्जुन को कहता हूं, क्योंकि अर्जुन आयु में छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, और इनको पहले मैंने देखा भी है। दुर्योधन ने कहा कि पहले तो मैं आया था, भगवान ने कहा ठीक है आप आए थे लेकिन मैंने देखा है अर्जुन को पहले, और नीति शास्त्र के अनुसार बड़े और छोटे की इच्छा को पूरा करना हो तो पहले छोटे की इच्छा को ही पूरा करना चाहिए, धर्म शास्त्र कहता है। अतः अर्जुन की इच्छा पहले पूरी की जाएगी। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम मांगो, इसमें से तुमको क्या चाहिए, एक तरफ मेरी सेना है और ध्यान रखना कि ये युद्ध का अवसर है, और एक तरफ मैं निहत्थे रहूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अब इसमें से जो चुनना हो चुन लो। तो दुर्योधन का हृदय धक धक करने लगा कि कहीं अर्जुन सेना न ले ले। तो अर्जुन ने कहा ठीक है आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको चुनता। इतना सुनते ही दुर्योधन प्रसन्न हो गया, वो कहा ठीक है तो द्वारकाधीश सेनापति को आज्ञा दीजिए मैं चलूं अब। और तो सेना लेकर के चला गया, खा पी करके अपने प्रस्थान किए। बाद में भगवान पूछने लगे अर्जुन से कि अर्जुन तुमको महाराज युधिष्ठिर ने भेजा था सेना लेने के लिए कि हमको लेने के लिए, तुमने ये कैसे गलती किया, युद्ध के अवसर पर सैनिक चाहिए ना, सेना चाहिए, तुमने हमको क्यों लिया। अर्जुन कहते हैं कृष्ण मुझे विजय की कोई कामना नहीं है, युद्ध हो चाहे कुछ भी हो, मैं जीवन में आपको चुना हूं, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि आखिर युद्ध करना है ना। तो अर्जुन कहते हैं कि यदि आप मेरे साथ केवल रहेंगे तो मैं देवताओं को भी मार सकता हूं, मनुष्यों की क्या गिनती, मुझमें इतना बड़ा उत्साह। और आप और युद्ध में कुछ भी मत कीजिए, चलिए मेरा रथ हाँकिए। और महाभारत में लिखा गया है अर्जुन कहते हैं कृष्ण मैं केवल रथ की बागडोर ही नहीं सौंपना चाहता हूँ आपको, अपने जीवन के रथ की बागडोर आपको देना चाहता हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं किसी भी स्थिति में आपका त्याग नहीं कर सकता। तो वैसे कृष्ण प्रेमी के ये पौत्र हैं परीक्षित महाराज, तो इन्होंने भी कृष्ण को ही अपने जीवन में चुना था, यद्यपि समस्त भूमंडल का राज्य इनके अधीन था, युधिष्ठिर महाराज के ये उत्तराधिकारी थे, सारे राजा जीत लिए गए थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, पृथ्वी में कोई विरोधी नहीं रह गया था, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण की सेवा को ही अपने जीवन में महत्व देते थे और कुछ भी नहीं। अतः ब्राह्मण का साप जब मिला तो ये बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। जब भगवान के धाम में जाने की इच्छा है ही और अब ये खबर मिली कि सातवें दिन ही चले जाएंगे, और इसे बढ़ करके खुशी क्या होगी। इसीलिए साधु में बहुत अच्छा इनको लगा। सुद गोस्वामी कहते हैं साधु मैंने, और पहले से ही भोगों को हे समझते थे, त्याज्य समझते, तुच्छ समझते थे, इसीलिए इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे टॉयलेट में बाथरूम में गया हुआ आदमी चाहता है कि जितना जल्दी निकल जाए, उसमें रहने की क्या जरूरत है। तो इस तरह से जो भगवान के भक्त होते हैं, इस संसार से भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, यहाँ उनको अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा जगह है भी नहीं, ये संसार अच्छा जगह नहीं है, सबसे फिट स्थान है भगवान का धाम जीव के लिए, जहाँ कोई दुख नहीं है, सारा सुख है, सारी सुव्यवस्था है, जहाँ मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, रोग शोक मोह भय नहीं है, कुछ भी कुंठा नहीं है, उसको वैकुंठ कहते हैं, चिंता नहीं किसी प्रकार की। तो महाराज परीक्षित की विशेषता थी, तो वे तुरंत ही अपने पुत्र को जन्मेजय जी को राज्य दे दिए। घर छोड़ने से पहले उन्होंने सोचा संभाल देना चाहिए, तो तुरंत दिए राज जन्मेजय जी को, और वे घर से निकल कर सब कुछ अपने पोशाक छोड़ छाड़ करके बिल्कुल पुराना वस्त्र पहन कर गंगा जी के तट पर आकर बैठ गए, और एक व्रत के साथ कि जब तक जीऊंगा मैं पानी नहीं पीऊंगा, खाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं, तो 7 दिन अनशन व्रत करके मैं शरीर छोड़ूंगा, मैंने ब्राह्मण का अपमान किया है प्यास और भूख के कारण, इसलिए मैं अब खाऊंगा नहीं। और माँ गंगा की शरण में पहुंच गए। जानते थे महाराज परीक्षित की माँ गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली हैं, और गंगा जी का आश्रय लूंगा, गंगा जी के तट पर शरीर छोड़ूंगा तो मैं भगवान के धाम में जाऊंगा। यह गंगा जी का प्रभाव। यावई लसत श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्रि रेणु अभ्यधिकांबु नेत्री पुनाति लोकान भयत्र शेषान कष्टम न सेवे तो मरिष्य मार। सूद गोस्वामी कहते हैं कि श्री गंगा जी के जल में भगवान के चरण कमलों का पराग बह करके आता है। जिस समय भगवान वामन देव अपने पैर को ऊपर बढ़ाए थे बहुत जोर से, तो एक पैर को तो नीचे बढ़ाए थे ना पे को ऊपर, ऊपर जब जन लोक महर लोक तप लोक सप्त लोक को लांघता हुआ भगवान का चरण कमल प्रकाश देता हुआ बढ़ रहा बहुत जोर से, तो ब्रह्मांड के जो कौभर हैं वो कौभर फट गया भगवान के मारने से पैर से, तो कारण समुद्र का जल चूने लगा फट करके, वो स्पिरिचुअल वाटर, तो भगवान के चरण कमल को धो करके बहुत वेग से धारा चूने लगी। तो श्री ब्रह्मा जी ने देखा उनके लोक का अंधकार नष्ट हो गया, ब्रह्मा जी भगवान के चरण नख की ज्योत्सना, तो ब्रह्मा जी अपने मरीचि आदि पुत्रों के साथ और जल लोक महर लोक के निवासी ऋषियों के साथ भगवान के चरण कमल की पूजा करने लगे, बहुत प्रकार से चंदन चढ़ाना पूजा करना, और भगवान के चरणों को धो करके जो जल आ रहा था स्पेशली ब्रह्मा जी ने धोया भगवान के चरणों को, तो उसमें वही जल जो है गंगा जी कहा गया, डायरेक्ट भगवान के चरणों को धोया हुआ था। एक तो अपने आप स्पिरिचुअल वाटर दिव्य जल था और दूसरे भगवान के चरण कमल को धो रहा था। तो सूत जी यह कहते हैं लसत श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांगी रेणु अभ्यधिका मुनेत्र, भगवान के चरणों में तुलसी की गंध रहती है, भक्त लोग भगवान को तुलसी चढ़ाया करते हैं, और वैसे भी तुलसी की गंध रहती है भगवान के चरण में, कमल की गंध, कस्तूरी की गंध, केसर की गंध, तो तुलसी विमिश्र भगवान के चरण कमल को धो करके गंगा जी आ रही थी, तो भगवान के चरण धूलि चरण रज से वो और महिमामयी हो गई है गंगा जी। और पुनाति लोक अनुभयत्र शेषान, सारे विश्व को गंगा जी पवित्र करती हैं, मतलब विश्व में जितने भी जीव हैं उनको और उनके लीडरों को, ईशान अथवा ईशकार थे भगवान शिव, भगवान शिव के साथ ही सारे ब्रह्मांड के जीवों को गंगा जी पवित्र करती हैं। गंगा जी का सबसे ज्यादा किसी ने आदर किया है तो भगवान शिव ने, चूंकि भगवान विष्णु शिव जी के इष्ट देव हैं, अतः भगवान के चरण जल को श्री महादेव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उन्हें गंगाधर कहा जाता है, और उनके जटा जूट से ही फिर गंगा जी इस पृथ्वी पर आई, भगीरथ जी लाए, इतना बड़ा आदर है। श्रीमद् भागवतम में एक प्रश्न किया गया है, भगवान कौन है, भगवान का डिफिनेशन क्या है, सीधा उत्तर दिया गया है कि जिसके चरण कमल से गंगा जी निकली है वो है भगवान, सीधा उत्तर है। ऐसी महिमामय महातीर्थमय श्री गंगा जी जिसके चरण कमल से निकली है वो है भगवान, और जिनके चरण भवन को ब्रह्मा जी अपने कमंडल में रखते हैं, से रोज स्नान करते हैं, और शिव जी अपने मस्तक पर परम आदर के साथ गंगा जी को धारण करते हैं, तो शिव और ब्रह्मा जिनके सेवक है वो है भगवान। ऐसा नहीं कोई भी भगवान हो जाएगा। आजकल के लोगों में बहुत यह भ्रम है कि कोई भी देवता भगवान है, जिसको मानो वही ठीक है। नहीं, शिव जी और ब्रह्मा जी जिसके चरण धोवन के दास हैं वो है भगवान, विष्णु के अलावा कोई भगवान नहीं है। तो इस तरह से महाराज परीक्षित के मनोभाव का अनुवाद कर रहे सूत जी, जब महाराज परीक्षित गंगा माता के शरण में जा रहे हैं तो यही सोच रहे हैं कि हमारे प्रभु के चरण से ये बहती हैं, और मैं भगवान के धाम में जाऊंगा तो गंगा जी के तट पर रहूंगा। हस्तिनापुर भी गंगा जी के तट पर ही था, परंतु फिर भी हस्तिनापुर से निकल करके कुछ दूर जंगल में गए जहां कोई उपद्रव ना हो राजकाज छोड़ करके। परंतु महाराज परीक्षित जब गए वहां तो इनके सारे पुत्र गए, चार पुत्र थे, राजा बन गए जन्मेजय, लेकिन पिता को कैसे छोड़ दें कि ऐसे जा करके कहां कैसे रहें। बड़े स्नेह से इनके चारों पुत्र वहां गए, तो वहां जाने के बाद जो ऋषि मुनि आए हैं तो सबकी व्यवस्था करने में चारों पुत्र लगे हुए थे वहां सब कुछ। कस्ता न सेवे तो मरिष्य माड़ा, सूत जी कहते हैं कौन ऐसा व्यक्ति है जो मरने की हालत में हो और वो गंगा जी का सेवन नहीं करेगा। कस्ता न सेवे तो कौन नहीं सेवन करेगा, इसका मतलब कि जो एक नंबर का बेवकूफ होगा, मूर्ख होगा, वही गंगा का सेवन नहीं करेगा। बुद्धिमान ऐसा कौन है जो सेवन नहीं करे, और वो अभी जिसको ये पता लग जाए कि अब हमारे जीवन के कुछ ही दिन या कुछ ही वर्ष रह गए, तो ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं गंगा जी का सेवन करेगा। सेवन करने का मतलब गंगा जी का पानी पीना, गंगा जी में स्नान करना, गंगा जी के किनारे ही रहना, यह बहुत बड़ा भाग्य है उन लोगों का जिन्हें गंगा जी और जमुना के किनारे रहने को मिलता है। सिर्फ गंगा जी का और जमुना जी का संबंध भगवान से डायरेक्ट है। जमुना जी के तट पर भगवान ने लीला किया है, और एक बहुत ही सुंदर संजोग बनता है कि जमुना के तट पर भगवान ने लीला किया, जमुना के दोनों कछार पर, और यह उनकी लीला कथा कही गई गंगा के तट पर, भागवत गंगा जी के तट पर हुआ। सनकादिक ऋषि ने भागवत किया था भक्ति देवी को पुष्ट करने के लिए, ज्ञान वैराग के लिए, तो गंगा के तट पर किया था। आनंद वन एक जगह है, हरिद्वार में ही है, और हमारा भी बहुत बड़ा भाग्य है कि उसी स्थान पर मैं भागवत कहता हूं, तो उसको आनंद वन कहते हैं, वहां पर भागवत हुआ था। और दूसरी बार महाराज परीक्षित गंगा जी के तट पर भागवत सुने। मुझे बात हरिद्वार में याद आ रही थी कि भगवान ने जमुना जी को धन्य किया, तो शायद गंगा जी रो रही थी कि हमारे तट पर भगवान ने लीला नहीं किया, तो भगवान ने व्यवस्था, कोई बात नहीं, मैं लीला किया जमुना के तट पर, लेकिन मेरी लीला की कथा होगी गंगा के तट पर। तो इस तरह से भगवान ने व्यवस्था दिया। गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक जमुना जी, गंगा जी के तट पर कितनी कथाएं होती रहती हैं भगवान की, गिना नहीं जा सकता। और जमुना के तीर पर तो होता ही है। मीरा जी ने राजस्थान से गाया था, चलमन गंगा जमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल पानी शीतल होत शरीर। बार बार वो गाई थी, मनोरथ करती थी कि हरे मन चलो गंगा जमुना के तट पर। ये मनोरथ होना चाहिए, और अवसर मिलने पर, भगवान की कृपा से सुविधा मिलने पर जमुना जी पर जाना चाहिए वृंदावन में, और गंगा जी के तट पर जहां तक। महाराज परीक्षित अपने जीवन में गंगा जी की शरण लिए। इति व्यवच्छिद्यस पांडवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यां दद्धौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनि व्रत मुक्त समस्त संग। इस प्रकार अपने जीवन में निश्चय करके महाराज परीक्षित आमरण अनशन का निश्चय किए और विष्णुपदी के तट पर बैठे। सबसे पहले वो गए गंगा जी में स्नान किए बहुत देर तक, और इसके बाद आ करके बैठे, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को हृदय में पकड़ लिए। दधौ, दधौ का अर्थ ध्यान करने लगे या रख लिए। मुकुंदांग्री, मुक्ति के दाता, प्रेम दाता भगवान श्री कृष्ण के अंग्री, अंग्री का अर्थ चरण, चरण को दधौ पकड़ लिए। पकड़ लेने का मतलब भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे। अनन्य भाव, अन्य किसी भी वस्तु या व्यक्ति में उनका भाव नहीं था, केवल भगवान कृष्ण में था। अनन्य भाव, इसका अर्थ कोई चिंतन नहीं हो रहा था, कुछ भी सोच विचार में नहीं थे, भगवान के सुंदर श्री विग्रह का ध्यान होने लगा, मन लग गया पूरा। मुनि व्रता है और मौन हो गए। यहाँ मौन का अर्थ है कि किसी से बातचीत करना छोड़ दिए, किसी भी विषय में कोई बातचीत नहीं था। घर से निकले तो उसी समय जो राज्य कार्य की बात किए किए, इसके बाद नहीं। इसको मुनि व्रत कहते हैं, मुक्त समस्त संग, और किसी का को साथ नहीं लिए, सब प्रकार की आसक्ति छोड़ दिए और हम गंगा जी के तट पर बैठ। तो जब यह संवाद फैला सारे ब्रह्मांड में कि महाराज परीक्षित आमरण अनशन व्रत करके गंगा जी के तट पर बैठ गए हैं और वे भगवान के धाम में जाने का संकल्प किए, तो विश्व के कोने कोने से जितने भी महान ऋषि मुनि हैं वे सब वहां आने लगे। अपने आप क्षण भर में संवाद फैल गया। आदमी कोई सोच सकता है कि भाई उस समय तो सेलफोन नहीं था, कुछ नहीं था, ईमेल नहीं था, कैसे पूरे ब्रह्मांड में समाचार चला गया। पहले बहुत सुपीरियर व्यवस्था थी, इतना मैकेनिकल व्यवस्था की जरूरत नहीं होती थी। नारद जी आदि ऐसे ऋषि थे जो क्षण भर में पूरे ब्रह्मांड में जा सकते थे। ये बात फैल गई और लोगों ने सोचा कि महाराज परीक्षित महाभागवत हैं, तो अवश्य गंगा जी के तट पर भगवान की कथा होगी, क्योंकि क्योंकि महाराज परीक्षित के जीवन से सब लोग जानते थे कि ये कथा सुन करके ही शरीर छोड़ेंगे। भगवान की कथा से पहले से ही इनको बहुत प्रेम था। कथा समानम भुवि नास्ति किंचित, इस संसार में भगवान कृष्ण की कथा के समान और कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज परीक्षित पहले से ही इस विषय में प्रसिद्ध थे, तो अवश्य ऋषियों को इस बात का निश्चित अनुमान हो गया कि ये भगवत कथा ही सुनेंगे, और कथा ही इनके जीवन का आधार है। कथा सुन करके ही भगवान के धाम में जाया जा सकता है, तो इसलिए इस कथा श्रवण का सुयोग पाने के लिए ऋषि लोग पूरे ब्रह्मांड से आने लगे, वहां जुट गए तुरंत। उनके परम पवित्र नाम यहां गिने जा रहे। पत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनय सशिष्यः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। तत्र उस समय गंगा जी के तट पर भुवनम पुनाना मुनयः उपजग्म, विश्व को पवित्र करने वाले मुनि लोग जुटने लगे, वहां आने लगे। उपजग्म मुनियों के विषय में सूत जी कहते हैं भुवनम पुनाना, एक एक भक्त ऐसे थे जो वहां आ रहे थे, ऋषि मुनि, ये सब विश्व को पवित्र करने में समर्थ है। विश्व को पवित्र करने का मतलब विश्वस्थित समस्त जनता को पवित्र कर सकते। महानुभावा, जिनके अनुभव प्रभाव बहुत थे, भगवान की भक्ति में बढ़े चढ़े सब मुनिजन, फालतू बात नहीं करने वाले थे सब, केवल भगवान का जप करते थे, भगवान की कथा सुनते थे, ये सब ऋषि मुनि आए। सशिष्य, शिष्य ही सहिता, अपने अपने शिष्यों के साथ सब आए, यह भी एक विशेषता है। ऋषि मुनि जितने भी आए अपने शिष्यों के साथ आए, ऐसा नहीं शिष्यों को कह दिया तुम मैनेजमेंट देखो और हम अकेले घूम आते हैं, नहीं, सब छोड़ो, बंद करो, कथा के लिए कुछ भी बंद किया जा सकता है, अपने अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं। आजकल के कलयुगी ऋषि लोग तो गुरु ही नहीं आते हैं, शिष्य कहाँ से आएंगे, ये आज की युग की दशा है। जितने मुनि आए सौ शिष्य अपने अपने शिष्यों के साथ आए। देखिए यही धर्म है, चाहे गुरु है, लोकनायक है, पिता है, परिवार का हेड है, तो उसका कर्तव्य है कि अपने सबॉर्डिनेट को, अपने अधीनस्थ व्यक्ति को भगवान की कथा में भेजे। व्यक्ति कथा सुनेगा तो उसके जीवन में उन्नति होगी, भगवान में प्रेम बढ़ेगा, संसार का आवेश कम होता है, यह उपकार है। किसी को खाना दे देना, कपड़ा दे देना, घर दे देना, यही सफिशियंट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण सेवा है अपने परिवार के लोगों की कि भगवान से जोड़ा जाए उसको, भगवान की कथा से जोड़ा जाए। भगवान से व्यक्ति जुड़ता है कथा द्वारा। आप यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी ऋषि मुनि आए हैं वे सब शिष्यों के साथ आए, सशिष्य। उनको शिष्य कहे होंगे कि गुरुदेव हम भी चलेंगे, हम भी सुनेंगे, तो कहे ठीक है सब बंद करो आश्रम चलो, यही कहे होंगे। वास्तव में भक्ति के लिए आश्रम है, आश्रम के लिए भक्ति नहीं की जाती है। मठ मंदिर जो भी है, इनका इंड क्या है, भगवान की कथा सुनना, भगवान का जप करना, भक्ति करना, इसके लिए सब मठ मंदिर है। मठ मंदिर संवारने के लिए भक्ति नहीं की जाती है, मठ मंदिर संवारा जाता है भक्ति के लिए, भक्ति प्रयोजन, और भक्ति में कथा श्रवण सबसे श्रेष्ठ, नाम कीर्तन श्रेष्ठ। इसीलिए सब ऋषि मुनि आए। प्रायण तीर्था भी गमाप देश स्वयं ही तीर्था निपुनंद संत। तो यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि हो सकता है वो लोग गंगा स्नान के लिए आए, नहीं नहीं तो गंगा स्नान के लिए तो आए, लेकिन ऐसे ऐसे मुनि आए हैं जो स्वयं ही गंगा आदि नदियों को पवित्र करने में समर्थ, वो कथा के लिए आए। गंगा जी के तट पर कथा हो रही थी इसलिए वे आए। तीर्था भी गमाप देश ही, तीर्थ यात्रा के बहाने संत स्वयं ही तीर्था निपुनंति, संत लोग स्वयं ही तीर्थों को पवित्र कर देते। उनकी ये भावना नहीं होती है कि हम तीर्थ को पवित्र करेंगे, लेकिन उनका प्रभाव ऐसा है कि तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। गंगा जी इस पृथ्वी पर नहीं आ रही थी, उसके दो कारण थे। गंगा जी ने कहा कि यदि मैं अपने वेग से पृथ्वी पर गिरूंगी तो पृथ्वी को फोड़कर पाताल में चले जाऊंगी, तो मेरे वेग को, मेरे फोर्स को धारण करने वाला कोई चाहिए। तो उसके लिए भगीरथ जी ने शिव जी को प्रसन्न किया कि आप धारण कीजिए। तो भगवान शिव तुरंत तैयार हो गए, उनका तो सौभाग्य था। लेकिन गंगा जी फिर भी रुक गई। वो कही कि पृथ्वी पर जब मैं जाऊंगी तो दुनिया भर के पापी आकर के मुझ में स्नान करेंगे, तो मैं मलिन हो जाऊंगी, मैं अपना पाप कहाँ धोऊंगी। तो भगीरथ जी ने कहा कि भगवान विष्णु के भक्त आएंगे, आप में स्नान करेंगे, तो उनके स्नान करने से आपका पाप कट जाएगा। तो गंगा जी तैयार हो गए, ठीक है ठीक है ठीक है। तब गंगा जी आए निश्चिंत। तो सूत जी कहते हैं कि ऐसे ऐसे ऋषि मुनि यहाँ आ रहे हैं जो अपने आगमन से, स्नान के बहाने गंगा जी को भी पवित्र करने में समर्थ। जानते हैं वैष्णवों में, भक्तों में क्यों इतना प्रभाव हो जाता है। एक साधु एक बार वृंदावन में कथा कह रहे थे, तो वो कहते थे कि गंगा जी में और साधु में क्या अंतर है। ये दोनों भगवान के भक्त हैं, दोनों का चरण कमल से संबंध है, लेकिन गंगा जी भगवान के चरण से निकलकर भाग रही हैं, और भक्त कहीं जन्म लिया इधर उधर अमेरिका में चाहे भारत में कहीं, वो वहां से भगवान के चरण में जा रहा है। एक कहीं जन्म लेकर के भगवान के चरण में जा रहा है और दूसरा जन्म लेकर के भाग रही है, तो भागने वाले का प्रभाव तो कम हो ही जाएगा। और भक्त जो निकट निकट जा रहा है भगवान के चरण कमल के पास, तो उसका तो प्रभाव बढ़ेगा ही। जो भी हो, गंगा जी परम पावन है भगवान के चरणों से संबंध होने के कारण, और संत महात्मा पावन होते हैं भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर के। तो संत जन स्वयं ही तीर्थों को पवित्र करते हैं, उनके मन में ऐसी भावना नहीं होती है कि मैं गंगा जी को पवित्र कर दूंगा, ऐसा कभी सोच नहीं सकते, ऐसा तो सोचना भी अपराध है। लेकिन उनका प्रभाव वास्तव में ऐसा होता है कि गंगा जी के तट पर कथा कीर्तन किया जाए, गंगा जी में स्नान किया जाए, भगवान का नाम जप किया जाए, तो गंगा जी भी अनुभव करती हैं कि मेरा पाप कट गया, इस तरह से सोचती। कौन कौन ऋषि लोग आ रहे हैं तो यहाँ गिना रहे हैं। अत्रिर वशिष्ठ च्यवन शरदवान अरिष्ट नेमी भृगुरंगिराश्च पराशरो गाधिसुतोथ राम उत्तथ इंद्र प्रमदेद्म बाहौ मेधातिथिर देवलयाष्टिसेणो भारद्वाजो गौतम पिप्पलाद मैत्रेय और वह कवश कुंभ योनि द्वैपायनो भगवान नारदश्च। अत्रि, श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार से इन ऋषियों का परिचय दिया है, लेकिन यहाँ इतना समय नहीं है इसलिए विस्तार नहीं किया जाएगा, केवल नाम सुने थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। अत्रि, अत्रि जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और भगवान इनके पुत्र बने हुए हैं। भगवान शिव, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से इनको तीन पुत्र प्राप्त हुए अनसुईया के द्वारा, अनसुईया के गर्भ से। तो ब्रह्मा जी के अंश से सोम हुए और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा जी और श्री भगवान के अंश से दत्तात्रेय जी। बहुत प्रसिद्ध ऋषि हैं और महाराज परीक्षित का जब सर्प यज्ञ हुआ जन्मेजय का, तो उसमें भी ये थे। महाराज पृथु के यज्ञ में थे
इन्होंने ही बताया था कि इंद्र तुम्हारा घोड़ा चुरा रहा है। और महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी ये थे, बहुत बड़े बड़े अवसरों पर रहे। वशिष्ठ जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र, ऐसे बाद में इनका जन्म उर्वशी के गर्भ से हुआ मित्रा वरुण के द्वारा, लेकिन मूलतः ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और बड़े बड़े राजाओं के पुरोहित रहे, रघुवंश के, भगवान श्री राम के वंश परंपरा में यही पुरोहित रहे कई राजाओं के समय में। इनके साथ विश्वामित्र जी का बहुत युद्ध हुआ था, इनके 100 पुत्रों को विश्वामित्र जी ने मार दिया था। ये बहुत क्षमाशील ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों में जब नाम आता है तो सबसे फर्स्ट नंबर वशिष्ठ जी का आता है, ब्राह्मण के गुणों से विभूषित। अपने शत्रु की भी प्रशंसा करते, इनकी हत्या करने के लिए गए थे विश्वामित्र जी एक दिन रात्रि के समय, पूर्णिमा की रात्रि थी। इनके कुटिया के पीछे विश्वामित्र जी तलवार लेकर के गए थे इनका वध करने के लिए, इसलिए कि वशिष्ठ जी हमको ब्राह्मण क्यों नहीं कहते। सारे ब्राह्मणों ने कह दिया कि यदि वशिष्ठ जी आपको कह देंगे कि आप ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण मार लेंगे आप। वशिष्ठ जी कहते नहीं थे, वशिष्ठ जी से ये कहते थे कि हमको ब्राह्मण कहो, तो नहीं आप ब्राह्मण हैं ही नहीं। तो अंत एक दिन की बात है कि वशिष्ठ जी से द्रोह करके विश्वामित्र जी उनका वध करने के लिए गए रात्रि में, तो चंद्रमा उगे हुए थे, प्रकाश फैला हुआ था। वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति के साथ रात्रि में बात कर रहे थे और बात विश्वामित्र जी के विषय में हो रही थी, और विश्वामित्र जी उनका वध करने गए थे घर के पीछे, सुन रहे थे विश्वामित्र जी। अरुंधति ने कहा कि कितना चंद्रमा का प्रकाश अच्छा लग रहा है। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, चंद्रमा का प्रकाश जैसे उद्भासित कर रहा है विश्व को, ऐसे विश्वामित्र मुनि की तपस्या सारे संसार के कलमश को दूर कर रही। विश्वामित्र जी का तेज बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत तप कर रहे हैं, चंद्रमा से तुलना कर रहे थे। और विश्वामित्र जी सुने इस बात को, अपनी पत्नी से एकांत में उस व्यक्ति की प्रशंसा की जा रही है जो उनका वध करने गया है। जब विश्वामित्र जी ये शब्द सुने वशिष्ठ जी के मुख से अपनी प्रशंसा, तो ये तलवार फेंक दिए और जा करके उनके चरणों में गिर गए, चरण में गिर गए। तो वशिष्ठ जी पहचान लिए, तो उसी समय उन्होंने कहा, आइए ब्रह्मर्षि जी, अब आप ब्राह्मण हो गए। अब आप ब्राह्मण हो गए, तो झगड़ा टंटा करके कोई ब्राह्मण थोड़े हो सकता है। मार काट करने में तेज थे विश्वामित्र जी, और जबरदस्ती कहते थे हमको ब्राह्मण कहो, ब्राह्मण कहो। उस दिन वशिष्ठ जी ने कहा कि अब आप ब्राह्मण हो गए, ठीक ऐसे रहना चाहिए ब्राह्मण। तो ऐसे वशिष्ठ जी महान महिमा में, अत्री जी ये सब कथा सुनने आए गंगा जी के तट, कितनी कथा की महिमा होगी। उस समय के लोग कितना महत्व समझते होंगे कथा का। च्यवन ऋषि, ये भी बहुत प्रसिद्ध ऋषि है। इनका विवाह महाराज सरजाति की पुत्री सुकन्या से हुआ था, और अश्विनी कुमारों ने, जो देवताओं के वैद्य हैं, इनको जवान बनाने के लिए बुढ़ापे में इनकी शादी हुई थी, इनको युवक बनाने के लिए उन लोगों ने एक प्रास बनाया, औले, जिसको च्यवन प्रास कहते हैं। तो उसको खा करके जवान हो गए थे, बिल्कुल युवक हो गए थे। च्यवन ऋषि भी अनेक अवसरों पर रहे हैं भक्तों के साथ, जैसे महाराज युधिष्ठिर आदि के साथ, इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। इन्होंने सनत कुमार दोनों भाइयों को देवताओं के लाइन में भोजन करना ठीक कर दिया, नहीं तो इंद्र उनको हटा दिए थे। इंद्र कहते थे वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर का काम नीच कर्म है, इसलिए ये लोग देवताओं के लाइन में भोजन नहीं करेंगे। लेकिन श्योन ऋषि ने अपने तपोबल से उनको देवताओं के लाइन में स्थान दिया, और इसी से कृतज्ञ होकर के दोनों अश्विनी कुमारों ने इनके लिए ये दवा बनाया था, तो बिल्कुल युवक हो गए। इतना युवक हो गए थे कि सुकन्या के पिताजी सरगति महाराज एक बार वन में आए देखने के लिए कि मेरी बेटी कैसे अपने पति की सेवा करती है। तो उन्होंने देखा कि मेरी बेटी एक युवक के साथ बैठी हुई, वो तो च्यवन ऋषि थे लेकिन पहचान नहीं पाए। विवाह करके गए थे तो वो तो बिल्कुल वृद्ध थे च्यवन ऋषि, और जब आए देखे तो एक युवक के साथ बैठी हुई है मेरी बेटी, तो बहुत चिंता में पड़ गए महाराज सरजात। वहां करके जब प्रणाम की तो वे आशीर्वाद भी नहीं दिए, मुंह फेर लिए और कहते हैं अरे निर्लज, अरे निर्लज, तुम इतने बड़े वंश में उत्पन्न होकर के भी और इस प्रकार का अधर्म क्यों किया? लोक वंदनीय मुनि का तुमने त्याग कर दिया, उनको बुरा समझ करके, कुरूप समझ करके, और रास्ता चलने वाले इस नवजुवक के साथ तुम हो गए चीज। तुम अपने पिता के कुल को और अपने पति के कुल को दोनों को नरक में डुबा दोगी, तुम्हारी मति ऐसे कैसे हो गई? वो तो बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे, सुन नहीं रहे थे। तुम्हारी ऐसी अधर्म मति कैसे प्रविष्ट हो गई? हाय हाय, कैसे अपने पति को छोड़ करके इस नवजुवक के साथ रह रही हो? तो वो हंस रहे थे सुकन्या। उसने कहा कि पिताजी आपके जमाता हैं, आपके दामाद हैं, यही हैं। तब उसने कैसे कैसे, तब सुकन्या ने कहा कि ऐसे अश्विनी कुमारों ने इनको युवक बनाया है। तब महाराज सरजाते अपनी कन्या का आलिंगन किए बहुत प्रेम से, वो बेटी तुमने बहुत अच्छा किया। तो इस तरह से च्यवन ऋषि समर्थ थे, जो देवताओं को भी भोजन दे सकते थे, वे आए हैं कथा स्थल पर। शरदवान, शरदवान कृपाचार्य, कृपाचार्य को शरदवान कहते हैं। अरिष्ट नेमी एक ऋषि का नाम है, भृगु, भृगु जी की कथा बहुत प्रसिद्ध है कि भगवान की परीक्षा लेने गए थे शिव जी की, ब्रह्मा जी की, बहुत महान ऋषि है। इनके चरण चिन्ह को भगवान अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं। एक बार सरस्वती नदी के तट पर एक यज्ञ होने वाला था, तो ऋषियों ने आपस में ये विवाद किया, जानबूझकर के विवाद खड़ा किया, भाई सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, कौन सबसे बड़ा है। तो सिलेक्ट करते करते तीन का नाम आया, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसमें भी आया कि इसमें से कौन बड़े हैं, सभी ऋषि जानते थे लेकिन लोक में प्रख्यात करने के लिए उन्होंने कहा कि कोई उपाय करना चाहिए सिद्ध करने के लिए कि कौन वास्तव में भगवान है, कौन ईश्वर है, कौन महान है। तब उन लोगों ने कहा कि भृगु जी जाकर तीनों की परीक्षा कर ले, टेस्ट कर ले कौन भगवान है। भृगु जी तैयार हो गए, ऋषियों के इंस्ट्रक्शन से तैयार हो गए, और सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, भगवत्ता की पहचान करने के लिए, जिसमें धैर्य होगा, क्रोध नहीं होगा, जो पूर्ण होगा, किसी के सम्मान अपमान का कोई बोध न हो, भगवान वही है ना। जिसको ये आकांक्षा हो कि हमको दंडवत किया जाए, हमको कुछ पैसा मिले, हमको ये मिले, इसका मतलब वो खुद अपूर्ण है, है ना, उस तो भिखमंगा है, वो क्या भगवान हो सकता है। तो ब्रह्मा जी के पास गए भृगु जी, तो भृगु जी आए, ये पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, तो पहले से ही सोचा इन्होंने कि आज प्रणाम नहीं करना है, देखना है कि ब्रह्मा जी कितना पानी में है, प्रणाम नहीं करूंगा। जब मिलते थे तब साष्टांग प्रणाम करते थे, और उस दिन तो ये टेस्ट लेना था उनका, ऋषियों ने बताया होगा कि ऐसे ऐसे परीक्षा लीजिएगा। तो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए, सभा के बीच में ब्रह्मा जी ने सोचा क्या हो गया, क्रेजी हो गया क्या, ये आज प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है, हर एक बार प्रणाम करता था प्रणाम नहीं कर रहा है। क्रोध आ गया मन में, लेकिन दूसरा दुर्गुण आया मोह, क्रोध के बाद मोह आया, मोह आया कि बच्चा है ध्यान नहीं गया होगा, अगर मैं इसको डांटता हूं तो मेरी ही बेइज्जती होगी कि अपने पुत्र को ऐसा ट्रेनिंग दिए, इसलिए वो चुपचाप रह गया। क्रोध आया भीतर मन में, ये लड़का उदंड हो गया, नालायक हो गया, लेकिन चुपचाप रह गया। भृगु जी समझ गए, जब ब्रह्मा जी पूछे नहीं कि क्या समाचार है, हाउ आर यू, कुछ नहीं किए, तो भृगु जी समझ गए कि तो पूरा पूरा एंग्री है, पूरा क्रोध में, परीक्षा हो गई। इसके बाद कैलाश गए, कैलाश में भगवान शिव बैठे हुए थे सभा में, अपने भाई को आते हुए देख करके शिव जी खड़े हो गए, ब्रह्मा जी के आंख से शिव जी का जन्म हुआ है, और भृगु जी भी ब्रह्मा जी के देह से ही जन्म लिए, तो भाई लगेंगे। तो शिव जी ने देखा कि हमारे भाई भृगु जी हमारे घर आ रहे हैं, तो वे उठ गए, कहे पार्वती जी से भी कि आ रहे, चलो अगवानी करने के लिए। लोग आए, शिव जी खड़े होकर के आए आलिंगन करने के लिए, तो भृगु जी अब एग्जामिनेशन का पेपर और कड़ा कर दिए। वे कहते हैं चलो मलेच्छ कहीं के, कभी स्नान करते हो, छूने आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं लग रही है, मैं कितना पवित्र ब्राह्मण और तुम ऐसे श्मशान की राख लगाते हो, हड्डी लगाते हो, कभी जीवन में स्नान किए हो, जटा बढ़ा लिया ऐसे तुमको, हमको छूने में शर्म लगनी चाहिए ना, चलो हटो। जब से दक्ष ने साप दिया है तब से तो तुम पिशाच हो गए। अब तो शिव जी को इतना क्रोध हुआ, इतना क्रोध हुआ कि वे तुरंत त्रिशूल उठा लिए, और बिल्कुल गला काटने के लिए भृगु जी का। वो पार्वती जी चरण में गिर गई, कहने लगे कुछ भी ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, बाप रे बाप, अभी मर्डर मत कीजिए, इतना है। और पार्वती जी के चरण में पकड़ लेने के कारण फिर वो छोड़ दिए, नहीं तो अब कुछ ही समय के बाद न्यूज फैला होता कि भृगु जी कैलाश में गए, वहां शिव जी के हाथ से ही मारे गए। तो भृगु जी अब यहां भी परीक्षा ले लिए और चले बैकुंठ। ये देखिए भगवत्ता की परीक्षा हो रही। और जब भगवान के पास पहुंचे तो और भी कड़ी परीक्षा ले रहे। भगवान से सज्जा पर लेटे हुए थे और माता लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी भगवान से, वो जा करके भगवान के वक्षस्थल में लात मार करके भृगु जी कहते हैं आलसी कहीं के, हमेशा सोए ही रहते हो। अरे बाप रे बाप, हमेशा सोए ही रहते हो, तब तक तो भगवान तुरंत हड़बड़ा करके उठे, वो तो सर्वज्ञ जानते थे, उठे भृगु जी को पलंग पर बैठाए से सज्जा पर, और नीचे बैठ करके उनके चरण को सहलाने लगे और कहने लगे कि हे मुनिराज, आपके आगमन का मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं उठकर स्वागत किया होता, आपके चरणों में चोट लग गई होगी, मेरा छाती बहुत कठोर है, मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, आपके चरणों में चोट लग गई होगी, और भगवान चरण सहलाने लगे। तो भृगु जी के चरण सहला रहते हैं, भृगु जी की आंखों में आंसू मार आए, तो इसको भगवान कहते। और उसी समय से भगवान उनके पैर के निशान को अपने छाती पर रखते हैं, भृगु पद चिन्ह, इतना प्रेम करते हैं भगवान। तो ऐसा महिमा में ऋषि श्रीमद् भागवत की कथा में आए हुए, कितना महात्म है भागवत का, इन ऋषियों के, इन श्रोताओं से समझना चाहिए। आजकल के लोग समझते हैं कि कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, कोई बात नहीं, आए नहीं, आए नहीं। क्या ये ऋषि लोग सब बेकाम फालतू थे, क्या किया गए थे? और लोग तो कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है, ये नहीं, हमारा ये इंगेजमेंट है, वो है, ये है, ये सब फालतू रोड पर बैठे हुए ऋषि थे, इनका कोई काम नहीं था। आजकल के मनुष्यों से 100 गुना इंगेज थे, भगवान की भक्ति में ही रहते थे, कथा कीर्तन में ही रहते थे, फिर भी इनकी लालसा है कथा सुनने की। आए अंगिरा, अंगिरा जी का भी नाम श्रीमद् भागवतम में बारंबार आया हुआ है। पराशरो, ये वशिष्ठ जी के पिता, नहीं, वशिष्ठ जी के पुत्र पराशर, भगवान वेदव्यास देव के पिता पराशर, गाधी सुत राम और गाधी तने श्री परशुराम जी आए हैं कथा। ये सब विश्व के सब सिलेक्टेड ऋषि मुनि पहुंचे हैं, राम और भगवान श्री राम परशुराम जी, ये सब लोग अपने अपने शिष्यों के साथ आए। और ये शिष्य लेकर चलते थे तो कोई 2-4 शिष्य लेकर नहीं चलते थे, 10-10 हजार, 5-5 हजार शिष्य लेकर चलते थे। और सब जितेंद्रिय थे, भूख प्यास की बाधा नहीं होती थी, ऐसा नहीं था कि अभी होटल मोटल बुक करना पड़े, ये करना पड़े, वो सब रह लेते थे जैसे तैसे। उतथ्य इंद्र प्रमद, उतथ्य इंद्र प्रमद इध्म बाहु मेधा तिथि देवल आष्टिसेन भारद्वाज गौतम पिपलाद मैत्रेय और वह कवसह कुंभजोनी श्री अगस्त जी द्वैपायन भगवान नारदश्च। स्वयं श्रीमद् भागवतम जिन्होंने पढ़ाया था सुखदेव गोस्वामी को, वे आए, भगवान वेदव्यास देव अपने द्वारा रचा हुआ भागवत सुनने के लिए आए। और इनको इंस्ट्रक्ट किया था नारद जी ने वेदव्यास देव को, तो वेदव्यास देव के गुरु नारद जी भी आए। कथा सुनने के लिए सब आए। अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्जा राजर्षि वर्जा अरुणादयश्च नानार्षेय प्रवरान् समेतान् अभ्यर्थ राजा शिरसा वंदे। अन्य भी देवताओं में श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, राजर्षियों में श्रेष्ठ, जैसे अरुण आदि राजर्षि, ये सब आए। और अनेक ऋषि लोग, ऋषियों की अनेक जो परंपराएं हैं, शिष्य प्रशिष्य सब वहां जुटे। और उन सब को आया हुआ देख करके महाराज परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम किया सबको। राजा सिरसा बबंदे, सिरसा का अर्थ अपने सिर को भूमि पर रख करके साष्टांग प्रणाम किए। और जब सारे ऋषि मुनि सुख पूर्वक बैठ गए, तब अपने मन के भाव को, संकल्प को महाराज परीक्षित ने प्रकट किया सबके सामने। सुखो पविष्टे स्वतते सुभूय कृतः प्रणामः स्वचकीर्षितं जत् विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितोग्रे विगृहीत वाणी सुख उपविष्टेशु। जब सभी ऋषि सुख से बैठ गए, आराम से बैठ गए, तो महाराज परीक्षित ने पुनः प्रणाम किया। पहले प्रणाम का वर्णन है, भूय कृत प्रणाम, फिर से प्रणाम किए। पहले तो आने पर स्वागत के लिए प्रणाम किए, अब प्रश्न करने के लिए प्रणाम कर रहे हैं। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से जब कोई प्रश्न पूछना हो तो प्रणाम करके प्रश्न पूछना चाहिए, न कि अंगुली दिखावे त्रिशूल की तरह, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन। ये परंपरा नहीं है, आई हैव वन क्वेश्चन, ये तो वो भी तर्जनी से, ये तर्जन करने वाली अंगुली है, जिसको डांटा जाता है तो इस अंगुली का प्रयोग किया जाता है। महाराज परीक्षित प्रश्न करना चाहते हैं तो भूय कृत प्रणाम, फिर से प्रणाम किए। प्रणाम करके ही प्रश्न करना चाहिए। भगवान ने गीता में विधि बताया, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया। प्रणिपात पहला है, प्र का अर्थ प्रकर्षण, र का अर्थ नितराम, ऋ का अर्थ नितराम, और पात का अर्थ गिरना। पूरा पूरा समर्पण करना, दंडवत करना, ऐसे प्रश्न किया जाता है, प्रणिपात कहते। प्रणी और पात, पात का अर्थ गिरना, और प्र का अर्थ प्रकर्षण, ऋ का अर्थ नितराम। ऐसे मन में भार मानकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्या करें अब इसको प्रणाम करना पड़ रहा है। नहीं, हृदय से इसको इसको प्रकर्षण कहते, हृदय से समर्पण करना चाहिए। और इस तरह से सेवा करके प्रश्न पूछना चाहिए, परिप्रश्ने न। तो महाराज परीक्षित इस तरह प्रणाम कर रहे हैं, विविक्त चेता। उनका मन परम पवित्र था, भगवान कृष्ण उनके मन में छाए हुए थे, तो स्वचिकीर्षितम, जब जो चाहते थे करना उसके विषय में विज्ञापयामास, विज्ञापन किए, बताए कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है, हे ऋषियों मैं भगवान के धाम जाना चाहता हूँ, मैं इसके लिए ये सोचा हूँ, करने को ये सोचा हूँ, ये सब पूछना चाहते हैं। और प्रणाम करके उपस्थित अग्रे, आगे आए ऋषियों के सामने, अभिगृहित पाणी, पाणी को जोड़ लिया, अंजलि बांध करके और पूछने लगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं उनके आगमन का, अहो वयम धन्यतमा नृपाणा महत्तमानुग्रहणीयशीलः राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचात् दूरात् विशिष्टं बत गर्य कर्म। अहो, हम धन्य हैं, क्षत्रिय में जन्म लेने पर भी हम परम धन्य हैं कि बड़े बड़े महानुभाव, बड़े बड़े संत के अनुग्रह के पात्र बने हम। क्षत्रिय का जीवन ऐसा है जैसे दंड देना, कर वसूल करना, युद्ध करना, इनका कठोर व्यवहार होता है। तो प्राय पहले के जो ऋषि मुनि साधु महात्मा होते थे, राजाओं से भेंट नहीं करते थे। धनी आदमी से तो सांप की तरह डरते थे, धनियों के पास नहीं जाते थे। क्यों? वो सोचते थे कि धनी आदमी कुछ पैसा दे देगा तो भोगों में फंस जाऊंगा, मेरा भजन छूट जाएगा, इसलिए वो धनी लोगों से कभी नहीं मिलते थे। महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि हम तो क्षत्रिय में जन्म लेकर के भी धन्य हैं कि महात्माओं के अनुग्रह का पात्र बने हुए हैं। अन्यथा राजाओं का जो कुल है, क्षत्रियों का जो कुल है, उसको तो साधु लोग वैसे दूर फेंकते हैं जैसे किसी ब्राह्मण के चरण जल को दूर से फेंका जाता है। दूरद विशिष्ट कहा गया, ये चरण धोवन यह भी एक मल मूत्र की ही तरह है, इसको फेंक ही देना चाहिए। यह भी ये शास्त्र बता रहा है कि चरण धो करके पानी फेंक देना चाहिए, दूरा विशिष्ट दूर फेंकना चाहिए। जैसे मूत्र त्यागने आदमी दूर जाता है, मल का त्याग दूर करता है। तो इस तरह से राजा परीक्षित कह रहे हैं कि हम लोग तो क्षत्रियों का खानदान वंश, तो वैसे ब्राह्मणों द्वारा या साधुओं द्वारा उपेक्षित होता है जैसे चरण धोवन को दूर फेंकते हैं। अच्छा, ब्राह्मण पद सौरा शौचा दूरा विशिष्ट, ब्राह्मण के चरण धोवन से हम लोग बहुत दूर फेंक दिए जाते हैं, अर्थात ब्राह्मण हम लोगों से चरण नहीं धुआ धुलाते, एक अर्थ ये हुए। लेकिन श्रीधर स्वामी जी एक श्लोक कोट करते हैं कि चरण धोवन को मल मूत्र को दूर फेंकना चाहिए, तो इस तरह से हम लोग दूर फेंके गए। ऐसे आप लोग हमारे पास आए हुए हैं, कृपा किए हैं। मैं तो घर गृहस्थी में आसक्त था, लेकिन ब्राह्मण का साप जो मुझे मिला, तो ये मैं अच्छा समझता हूँ, इससे मुझे विरक्ति हुई है, मेरे मन में भय हुआ है। ये सब ऊपर से बात कह रहे हैं, इनको बहुत अच्छा लगा है, लेकिन ऋषियों के सामने अपना निर्णय सुना रहे हैं। कोई ये न उसमें आ जाए ऋषि मुनि करने के लिए, तब महाराज को बचाने के लिए हम विष झाड़ने का कोई उपाय करेंगे, ये करेंगे, इनको बचाएंगे, चाहे इनको लेकर के भाग जाया जाए जहां तक्षक न पहुंचे। महाराज परीक्षित ने सब मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा न करे। एक वर्णन आता है महाभारत में, एक ऋषि आए और वो कहे कि हम आपको मरने नहीं देंगे, सांप आएगा तो सांप को स्तंभित करने की विद्या मेरे पास है, वो काट ही नहीं सकेगा। महाराज परीक्षित ने कहा नहीं, ये करना ही नहीं है, हमें शरीर छोड़ना है। मैं जानता हूं कि भगवान जो पौर और अवर के ईश हैं, जो छोटे बड़े सबके ईश्वर हैं, भगवान श्री कृष्ण, वही ब्राह्मण के साथ के रूप में मेरे पास आए हैं, मैं जानता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है। तस्यैव मेघस्य परावरेषो व्यासक्त चित्तस्य गृहे स्वभिक्षणम् निर्वेदम् भूतो द्विजसापरूपो जत्र प्रसक्तो भयमाशुधत्ते। मैं अघ की मूर्ति, मैं पापी हूं, गृहेषु अभिक्षण व्यासक्त चित्तस्य, मैं घर गृहस्थी में आसक्त रहा हूं, राजा के काम में रहा, तो परावरेश पर का अर्थ ब्रह्मा आदि और छोटे छोटे जीव सबके जो ईश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण, वही द्विजसाप रूप ब्राह्मण के साप के रूप में मेरे पास आए हुए हैं, वे मुझे अपने धाम में ले जाना चाहते हैं। निर्वेद मूल, यह जो ब्राह्मण का साप है, यह विरक्ति का कारण है। ऐसे साप को सुन करके व्यक्ति अनाशक्त हो जाता है, भय प्राप्त करता है। तो मैं चाहता हूं कि वह तक्षक मेरे पास आवे और मैं ऐसी स्थिति में हूं, मैं आपके शरण में हूं। तम मोपयातम प्रतियंत विप्रा, तम मा उपयातम, मैं आपके शरण में आया हुआ हूं, आप प्रतियंतु, आप हम पर विश्वास कीजिए, मैं पूर्ण हृदय से आपकी शरण में हूं। और गंगा च देवी धृतचित्तमी से, मैं माँ गंगा की शरण में हूं और आप लोगों की शरण में हूं, भक्तों की शरण में हूं और गंगा की शरण, ये कह रहे हैं। आप जब आए हैं कृपा करके मेरे जीवन के अंतिम दिनों में यहाँ पर, तो आप मुझे अपना सेवक समझिए, आपकी शरण में हूं और गंगा जी की शरण में हूं, और मैंने अपना चित्त भगवान कृष्ण के चरण कमल में रख दिया है। धृत चित्तम ईशे, ईशे का अर्थ परमेश्वर है, भगवान श्री कृष्ण में मैंने अपने चित्त को धर दिया है। अब इस दशा में द्विजोपसृष्ट कुहकश तक्षकोवा, ब्राह्मण के द्वारा प्रेरित तक्षक मेरा
वध कर दे, मुझे डस दे, या अन्य किसी प्रकार से मेरी मृत्यु हो, मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे जीवन में केवल एक ही अभिलाषा है कि मैं भगवान की कथा सुनते हुए शरीर त्यागूं। इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप सब भगवान की गाथा गाइए, कथा कहिए। ऋषि लोग आपस में कुछ कानाफूसी कर रहे थे कि क्या किया जाए, महाराज को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसी पर महाराज ने कहा कि कोई कुछ भी विचार न करे, आप लोग भगवान विष्णु की, कृष्ण की गाथा गाइए। इसके बाद कैलाश गए। कैलाश में भगवान शिव बैठे हुए थे सभा में, अपने भाई को आते हुए देख करके शिव जी खड़े हो गए। ब्रह्मा जी के आंख से शिव जी का जन्म हुआ है और भृगु जी भी ब्रह्मा जी के देह से ही जन्म लिए, तो भाई लगेंगे। तो शिव जी ने देखा कि हमारे भाई भृगु जी हमारे घर आ रहे हैं, तो वे उठ गए, कहे पार्वती जी से भी कि आ रहे, चलो अगवानी करने के लिए। लोग आए, शिव जी खड़े होकर के आए आलिंगन करने के लिए। तो भृगु जी अब एग्जामिनेशन का पेपर और कड़ा कर दिए। वे कहते हैं, चलो मिले अच्छे कहीं के, कभी स्नान करते हो, छूने आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं लग रही है, मैं कितना पवित्र ब्राह्मण और तुम ऐसे श्मशान की राख लगाते हो, हड्डी लगाते हो, कभी जीवन में स्नान किए हो? जटा बढ़ा लिया ऐसे तुमको, हमको छूने में शर्म लगनी चाहिए ना, चलो हटो। जब से दक्ष ने साप दिया है तब से तो तुम पिशाच हो गए। अब तो शिव जी को इतना क्रोध हुआ, इतना क्रोध हुआ कि वे तुरंत त्रिशूल उठा लिए, और बिल्कुल गला काटने के लिए भृगु जी को। तो पार्वती जी चरण में गिर गई, कहने लगे कुछ भी ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, बात री बात, अभी मर्डर मत कीजिए, इतना है। और पार्वती जी के चरण में पकड़ लेने के कारण फिर वो छोड़ दिए, नहीं तो अब कुछ ही समय के बाद न्यूज फैला होता कि भृगु जी कैलाश में गए, वहां शिव जी के हाथ से ही मारे गए। तो भृगु जी अब यहां भी परीक्षा ले लिए और चले वैकुंठ। देखिए भगवत्ता की परीक्षा हो रही। और जब भगवान के पास पहुंचे तो और भी कड़ी परीक्षा ले रहे। भगवान शेष सज्जा पर लेटे हुए थे और माता लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी भगवान के, और जा करके भगवान के वक्षस्थल में लात मार करके भृगु जी कहते हैं, आलसी कहीं के, हमेशा सोए ही रहते हो। बात रही बात, हमेशा सोए ही रहते हो, तब तक तो भगवान तुरंत हड़बड़ा करके उठे। वो तो सर्वज्ञ जानते थे, उठे, भृगु जी को पलंग पर बैठाए से सज्जा पर, और नीचे बैठ करके उनके चरण को सहलाने लगे और कहने लगे कि हे मुनिराज, आपके आगमन का मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं उठकर स्वागत किया होता। आपके चरणों में चोट लग गई होगी, मेरा छाती बहुत कठोर है, मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, आपके चरणों में चोट लग गई होगी, और भगवान चरण सहलाने लगे। तो भृगु जी के चरण सहला रहते हैं, भृगु जी की आंखों में आंसू मार आए, तो इसको भगवान कहते। और उसी समय से भगवान उनके पैर के निशान को अपने छाती पर रखते, भृगु पद चिन्ह, इतना प्रेम करते हैं भगवान। तो ऐसा महिमा में ऋषि श्रीमद् भागवत की कथा में आए हुए, कितना महात्म है भागवत का, इन ऋषियों के, इन श्रोताओं से समझना चाहिए। आजकल के लोग समझते हैं कि कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, कोई बात नहीं, आए नहीं, आए नहीं। क्या ये ऋषि लोग सब बेकाम फालतू थे क्या, कि आ गए थे?
और लोग तो कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है, ये नहीं, हमारा ये इंगेजमेंट है, वो है, ये है, ये सब फालतू रोड पर बैठे हुए ऋषि थे, उनका कोई काम नहीं था। आजकल के मनुष्यों से 100 गुना इंगेज थे, भगवान की भक्ति में ही रहते थे, कथा कीर्तन में ही रहते थे, फिर भी इनकी लालसा है कथा सुनने की। आए अंगिरा, अंगिरा जी का भी नाम श्रीमद् भागवतम में बारंबार आया हुआ है। पराशरो, ये वशिष्ठ जी के पिता, नहीं वशिष्ठ जी के पुत्र, पराशर भगवान वेदव्यास देव के पिता, पराशर गाधी सुतथ राम और गाधी तनय श्री परशुराम जी आए हैं कथा। ये सब विश्व के सब सिलेक्टेड ऋषि मुनि पहुंचे हैं, राम और भगवान श्री राम परशुराम जी, ये सब लोग अपने अपने शिष्यों के साथ आए। और ये शिष्य लेकर चलते थे तो कोई दो चार शिष्य लेकर नहीं चलते थे, 10-10 हजार, 5-5 हजार शिष्य लेकर चलते थे। और सब जितेंद्रिय थे, भूख प्यास की बाधा नहीं होती थी, ऐसा नहीं था कि अभी होटल मोटल बुक करना पड़े, ये करना पड़े, वो सब रह लेते थे जैसे तैसे। उतत्थ इंद्र प्रमद, उतत्थ इंद्र प्रमद इद्म बाहु मेधा तिथिर देवल आष्टी सेन भारद्वाज गौतम पिपलाद मैत्रेय और वह कवसह कुंभजोनी श्री अगस्त जी द्वैपायनो भगवान नारदश्च। स्वयं श्रीमद् भागवतम जिन्होंने पढ़ाया था सुखदेव गोस्वामी को, वे आए भगवान वेदव्यास देव, अपने द्वारा रचा हुआ भागवत सुनने के लिए आए। और इनको इंस्ट्रक्ट किया था नारद जी ने वेदव्यास देव को, तो वेदव्यास देव के गुरु नारद जी भी आए कथा सुनने के लिए सब आए। अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्जा राजर्षि वर्जा अरुणादयश्च नानार्षेय प्रवरान् समेतान् अभ्यर्च राजा शिरसा वंदे। अन्य भी देवताओं में श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, राजर्षियों में श्रेष्ठ, जैसे अरुण आदि राजर्षि, ये सब आए। और अनेक ऋषि लोग, ऋषियों के अनेक जो परंपराएं हैं, शिष्य प्रशिष्य सब वहां जुटे और उन सबको आया हुआ देख करके महाराज परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम किया सबको। राजा सिरसा बबंदे, सिरसा करते अपने सिर को भूमि पर रख करके साष्टांग प्रणाम किए। और जब सारे ऋषि मुनि सुख पूर्वक बैठ गए तब अपने मन के भाव को, संकल्प को महाराज परीक्षित ने प्रकट किया सबके सामने। सुखोपविष्टे स्वतते सुभूयः कृतः प्रणामः स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽग्रे विगृहीतवाणिः। सुख उपविष्टेषु, जब सभी ऋषि सुख से बैठ गए, आराम से बैठ गए, तो महाराज परीक्षित ने पुनः प्रणाम किया। पहले प्रणाम का वर्णन है, भूय कृत प्रणाम, फिर से प्रणाम किए। पहले तो आने पर स्वागत के लिए प्रणाम किए, अब प्रश्न करने के लिए प्रणाम कर रहे हैं। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से जब कोई प्रश्न पूछना हो तो प्रणाम करके प्रश्न पूछना चाहिए, न कि अंगुली दिखावे त्रिशूल की तरह, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन। ये परंपरा नहीं है, आई हैव वन क्वेश्चन, ये तो वो भी तर्जनी से, ये तर्जन करने वाली उंगली है, जिसको डांटा जाता है तो इस उंगली का प्रयोग किया जाता है। महाराज परीक्षित प्रश्न करना चाहते हैं तो भूय कृत प्रणाम, फिर से प्रणाम किए, प्रणाम करके ही प्रश्न करना चाहिए। भगवान ने गीता में विधि बताया, तद विधि प्रणिपाते न परि प्रश्न सेवया। प्रणिपात पहला, प्र का अर्थ प्रकर्षण, ण का अर्थ नितराम, ऋ का अर्थ नितराम और पात का अर्थ गिरना। पूरा पूरा समर्पण करना, दंडवत करना, ऐसे प्रश्न किया जाता है, प्रणिपात कहते। प्रणी और पात, पात का अर्थ गिरना और प्र का अर्थ प्रकर्षण, ऋ का अर्थ नितराम। ऐसे मन में भार मानकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्या करें अब इसको प्रणाम करना पड़ रहा है, नहीं, हृदय से इसको इसको प्रकर्षण कहते, हृदय से समर्पण करना चाहिए और इस तरह से सेवा करके प्रश्न पूछना चाहिए, परिप्रश्न न। तो महाराज परीक्षित इस तरह प्रणाम कर रहे हैं, विविक्त चेता, उनका मन परम पवित्र था, भगवान कृष्ण उनके मन में छाए हुए थे, तो स्वचिकीर्षितम जब जो चाहते थे करना उसके विषय में विज्ञापयामास, विज्ञापन किए, बताए कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है, हे ऋषियों मैं भगवान के धाम जाना चाहता हूँ, मैं इसके लिए ये सोचा हूँ, करने को ये सोचा हूँ, ये सब पूछना चाहते हैं। और प्रणाम करके उपस्थित अग्रे, आगे आए ऋषियों के सामने, अभिगृहित पाणी, पाणी को जोड़ लिया, अंजलि बांध करके और पूछने लगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं उनके आगमन का, अहो वयम धन्यतमा नृपाणा महत्तमानुग्रहणीयशीलः राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचात् दूरात् विशिष्टं बत गर्य कर्म। अहो हम धन्य हैं, क्षत्रिय में जन्म लेने पर भी हम परम धन्य हैं कि बड़े बड़े महानुभाव, बड़े बड़े संत के अनुग्रह के पात्र बने हम। क्षत्रिय का जीवन ऐसा है जैसे दंड देना, कर वसूल करना, युद्ध करना, इनका कठोर व्यवहार होता है। तो प्राय पहले के जो ऋषि मुनि साधु महात्मा होते थे, राजाओं से भेंट नहीं करते थे, धनी आदमी से तो सांप की तरह डरते थे, धनियों के पास नहीं जाते थे। क्यों? वो सोचते थे कि धनी आदमी कुछ पैसा दे देगा तो भोगों में फंस जाऊंगा, मेरा भजन छूट जाएगा, इसलिए वो धनी लोगों से कभी नहीं मिलते थे। महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि हम तो क्षत्रिय में जन्म लेकर के भी धन्य हैं कि महात्माओं के अनुग्रह का पात्र बने हुए हैं। अन्यथा राजाओं का जो कुल है, क्षत्रियों का जो कुल है, उसको तो साधु लोग वैसे दूर फेंकते हैं जैसे किसी ब्राह्मण के चरण जल को दूर से फेंका जाता है, दूरत विशिष्ट। कहा गया ये चरण धोवन यह भी एक मल मूत्र की ही तरह है, इसको फेंक ही देना चाहिए। यह भी ये शास्त्र बता रहा है कि चरण धो करके पानी फेंक देना चाहिए, दूरा विशिष्ट, दूर फेंकना चाहिए, जैसे मूत्र त्यागने आदमी दूर जाता है, मल का त्याग दूर करता। तो इस तरह से राजा परीक्षित कह रहे हैं कि हम लोग तो क्षत्रियों का खानदान वंश तो वैसे ब्राह्मणों द्वारा या साधुओं द्वारा उपेक्षित होता है जैसे चरण धोवन को दूर फेंकते हैं। अच्छा, ब्राह्मण पद सौरा शौचा दूरा विश्रिष्टम, ब्राह्मण के चरण धोवन से हम लोग बहुत दूर फेंक दिए जाते हैं, अर्थात ब्राह्मण हम लोगों से चरण नहीं धुलाते, एक अर्थ ये हुए। लेकिन श्रीधर स्वामी जी एक श्लोक कोट करते हैं कि चरण धोवन को, मल मूत्र को दूर फेंकना चाहिए, तो इस तरह से हम लोग दूर फेंके गए। ऐसे आप लोग हमारे पास आए हुए हैं, कृपा किए हैं। मैं तो घर गृहस्थी में आसक्त था, लेकिन ब्राह्मण का साप जो मुझे मिला, तो ये मैं अच्छा समझता हूँ। इससे मुझे विरक्ति हुई है, मेरे मन में भय हुआ है, ये सब ऊपर से बात कह रहे हैं। इनको बहुत अच्छा लगा है, लेकिन ऋषियों के सामने अपना निर्णय सुना रहे हैं। कोई ये न उसमें आ जाए ऋषि मुनि करने के लिए, तब महाराज को बचाने के लिए हम विष झाड़ने का कोई उपाय करेंगे, ये करेंगे, इनको बचाएंगे, चाहे इनको लेकर के भाग जाया जाए जहां तक्षक न पहुंचे। महाराज परीक्षित ने ऐसा मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा न करे। एक वर्णन आता है महाभारत में, एक ऋषि आए और वो कहे कि हम आपको मरने नहीं देंगे, सांप आएगा तो सांप को स्तंभित करने की विद्या मेरे पास है, वो काट ही नहीं सकेगा। महाराज परीक्षित ने कहा नहीं, ये करना ही नहीं है, हमें शरीर छोड़ना है। मैं जानता हूं कि भगवान जो पौर और अवर के ईश हैं, जो छोटे बड़े सबके ईश्वर हैं, भगवान श्री कृष्ण, वही ब्राह्मण के साथ के रूप में मेरे पास आए हैं, मैं जानता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है। तस्यैव मेघस्य परावरेषो व्यासक्त चित्तस्य गृहे स्वभिक्षणम् निर्वेदम् भूतो द्विजसापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। मैं अघ की मूर्ति हूं, मैं पापी हूं, गृहेशु अभिक्षण व्यासक्त चित्तस्य, मैं घर गृहस्थी में आसक्त रहा हूं, राजा के काम में रहा, तो परावरेश पर का अर्थ ब्रह्मा आदि और छोटे छोटे जीव सबके जो ईश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण, वही द्विजसाप रूप ब्राह्मण के साप के रूप में मेरे पास आए हुए हैं, वे मुझे अपने धाम में ले जाना चाहते हैं। निर्वेद मूल, यह जो ब्राह्मण का साप है, यह विरक्ति का कारण है। ऐसे साप को सुन करके व्यक्ति अनाशक्त हो जाता है, भय प्राप्त करता है। तो मैं चाहता हूं कि वह तक्षक मेरे पास आवे और मैं ऐसी स्थिति में हूं, मैं आपके शरण में हूं। तम मोपयातम प्रत्यंत विप्रा, तम मा उपयातम, मैं आपके शरण में आया हुआ हूं, आप प्रतियंतु, आप हम पर विश्वास कीजिए, मैं पूर्ण हृदय से आपकी शरण में हूं। और गंगा च देवी धृतचित्तमी से, मैं माँ गंगा की शरण में हूं और आप लोगों की शरण में हूं, भक्तों की शरण में हूं और गंगा की शरण, ये कह रहे हैं। आप जब आए हैं कृपा करके मेरे जीवन के अंतिम दिनों में यहाँ पर, तो आप मुझे अपना सेवक समझिए, आपकी शरण में हूँ और गंगा जी की शरण में हूँ, और मैंने अपना चित्त भगवान कृष्ण के चरण कमल में रख दिया है। धृत चित्तम ईशे, ईशे का अर्थ परमेश्वर है, भगवान श्री कृष्ण में मैंने अपने चित्त को धर दिया है। अब इस दशा में द्विजोपसृष्ट कुहकश तक्षको वा, ब्राह्मण के द्वारा प्रेरित तक्षक मेरा वध कर दे, मुझे डंस दे, या अन्य किसी प्रकार से मेरी मृत्यु हो, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे जीवन में केवल एक ही अभिलाषा है कि मैं भगवान की कथा सुनते हुए शरीर त्यागूं। इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप सब भगवान की गाथा गाइए, कथा कहिए। ऋषि लोग आपस में कुछ कानाफूसी कर रहे थे कि क्या किया जाए, महाराज को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसी पर महाराज ने कहा कि